क्या कह रहे हैं, मतलब यत्तखिज वलदन, कि जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, तो अल्लाह ताला ने जो है ना किसी को बेटा बनाया ना उसकी कोई बेटी है, तो अल्लाह की बादशाहत में कोई उसका साजी नहीं है, अकेला बादशाह है, अकेला यानी गोया के तन्हा मालिक है। अब आप देखें कि दुनिया में क्या होता है कि बाज लोग जब जो है वो अगर औलाद है तो लोग समझते हैं कि अब कोई खौफ नहीं रहा, मेरे पास औलाद है ना तो ये औलाद मेरे मसाइल का हल है ना। हत्ता कि अगर किसी के पास औलाद नहीं होती तो लोग डर कर गोद में किसी का बच्चा ले लेते हैं ना, कि तन्हाई के डर से, या फिर जो है वो उनको ये बात लगती है कि मरने के बाद हमारा वारिस कौन होगा, कौन हमारे जो है वो काम आएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, और अगर कोई शख्स ये समझता है कि यानी जिस तरह से उनको अगर औलाद नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट करके वो ये समझता है कि तन्हाई में अकेलेपन में उसका कोई सहारा बनेगा, तो इसी तरह लोगों ने अल्लाह के साथ भी अडॉप्शन जो थी ना उसको जोड़ दिया कि अल्लाह ताला का फलां बेटा है, जैसे फरिश्ते या जिन्नों में से कोई या इंसानों में से कोई, तो अल्लाह ताला को किसी चीज का कोई डर नहीं है कि मेरे कौन काम आएगा, कब काम आएगा, क्या होगा, क्योंकि ये सख्त जहालत और गुस्ताखी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने शिर्क की जड़ को काट कर क्या कहा, वलम यत्तखिज वलदन, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि गोया के ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला अकेला बादशाहत कर ना सकता हो, इतनी बड़ी बादशाहत तो उसको कोई साथ चाहिए अपने, नहीं, आसमानों और जमीन की बादशाही जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की है। और जब कोई बेटा बेटी है ही नहीं, कोई नस्बी ताल्लुक है ही नहीं, तो क्या है कि उसकी बादशाही में भी कोई शरीक नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला दलील दे रहे हैं कि ना कोई बेटा ना कोई उसकी बादशाही में शरीक, जब बादशाही उसकी तो दलील एक और दी और वो क्या है, वह खला का कुल्ला शई इन फकदरहू तकदीरा, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर कि इसकी एक तकदीर मुकर्रर की। ये अल्लाह की तौहीद और यकताई पर ना दलील है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी कायनात में चीजें हैं सारी की सारी चीजें जो है ना वो अल्लाह ताला ने खुद पैदा की हैं, और जब चीजों को पैदा किया है खालिक वो है तो पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि दूसरी बात क्या कही, फकद्दरहू तकदीरा, कि फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर की। इसका एक तर्जुमा आप यूं भी कर सकती हैं कि हर चीज को एक अंदाजा खास पर रखा, हर चीज को पैदा करके एक मुनासिब अंदाजे पर अल्लाह ताला ने जो है वो ठहरा दिया। खालिक भी वही, हर चीज उसने जो है वो मुहैया की, फिर ये कि हर चीज की जो है उसका एक अंदाजा खास, एक ठीक ठीक पैमाना मुकर्रर कर दिया, ठीक ठीक पैमाना मुकर्रर किया। मसलन आप देखें कि अल्लाह ताला ने जब हर चीज को वजूद दिया तो उसकी सूरत, जसामत, उसकी कुव्वत इस्तदाद, उसके औसाफ और खसाइस, यानी उसके औसाफ क्या होंगे, उसकी खसूसियात क्या होंगी, उसका काम, वो काम क्या करेगी चीज, उसका काम का तरीके कार क्या होगा, दुनिया में उसकी रहने की बका की मुद्दत कितनी है, उसको उरूज और इर्तका कब मिलेगा, और उसकी हद क्या है और जवाल क्या है। तो गोया के हर चीज की मौत, रोजी और उसका अंदाज अल्लाह ताला ने जो है वो मुकर्रर कर दिया, और फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने असबाब, वसाइल, ये सारी चीजें जो है वो फराहम की। मसलन आप देखें कि ये जो जमीन है, जमीन का जो क्रस्ट है, जमीन का छिलका जो है, इसकी मिकदार कितनी है। कहते हैं कि जमीन का क्रस्ट एक खास मिकदार में है, अगर इसका छिलका या इसकी मौजूदा मिकदार चंद कदम और ज्यादा होती, चंद कदम और ज्यादा मोटी होती तो नबातात का वजूद खत्म हो जाता, जमीन के ऊपर कोई नबातात उग ना सकती और फिर उसका वजूद बरकरार ना रहता। इसी तरह ये जो हवा है इसमें ऑक्सीजन जो है वो कितनी है ना, तो अगर जो है, अगर इसमें ऑक्सीजन जैसे अगर 21% है, अगर ये ज्यादा हो जाती, यानी 50% से ज्यादा हो जाती, तो कहते हैं कि इस वक्त भी फिर, यानी हवा के अंदर जलने के काबिल जो है वो मवाद होता है कि इसीलिए हवा जल्दी से आग को पकड़ती है, लेकिन इतनी नहीं है वो, जलने के काबिल मवाद इतनी इतना ज्यादा नहीं है, खास मिकदार में है। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए, हर तरफ आग ही आग जो है वो लग जाए। इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर इतना एक तवाजुन रखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्या हुआ कि जो भी ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, उन्होंने बहुत साल पहले की बात है कि एक खरबूजे की काश्त की, और खरबूजे की काश्त जो थी वो क्यों की, ताकि हिफाजती बाड़ के तौर पर। लेकिन वो जो खरबूजे की काश्त थी, उसने हिफाजत की बजाय क्या किया कि वो इतना तेजी से बड़ा, वो खरबूजे के काबिल जो बेल थी, खरबूजे की तरह की, इंग्लैंड के बराबर जो रकबा था ना, उसने उस लपेट में ले लिया। इतना ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया। अब वो मुख्तलिफ दवाइयां और चीजें और मुख्तलिफ चीजें यूज कर रहे हैं कि कैसे उसको अब खत्म करें ना, खत्म होने में नहीं आता। उनके जो माहरीन थे वो बैठे परेशान हुए क्या किया जाए। तो कहते हैं कि फिर जो है, जब इंग्लैंड के बराबर रकबे को उस खरबूजे ने घेर लिया, उस बेल ने खरबूजे की, वो खरबूजा था अभी खारदार, जैसे कांटों वाला नहीं होता, उस तरह का था। तो अब ये कि कहते हैं कि फिर एक कीड़ा जो था उनको मिला, जिसकी मतलब रिसर्च और मुख्तलिफ जगह पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में, कि जिसका खुराक ही वो खरबूजा था, वो खारदार खरबूजा था। फिर वो उस कीड़े को जो है उन्होंने वहां पे छोड़ा, और कुछ ही अरसे में वो जो बेलें थी ना, फिर वो खत्म हो गई। तो इससे क्या बात पता चलती है, अल्लाह ताला ने हर चीज की जो है ना कुछ इलाज भी मुकर्रर किया हुआ है ना। और बाज औकात इंसानी अकल उस पर हैरान रह जाती है कि कैसे उसका एंड करे, तो इंसान तो ना कर सके, लेकिन वो कीड़े की चूंकि खुराक थी, वो और कुछ खाता ही नहीं था, वो वही खाता था। तो इस तरह वो खारदार खरबूजा जो था, वो ऑस्ट्रेलिया में उसका इलाज जो था वो किया गया। इसी तरह आप देखें कि मलेरिया का मच्छर, ये चंद इलाकों में और चंद औकात में होता है, अगर पूरी दुनिया में ये फैल जाए तो फिर क्या हो कि दुनिया जो है वो खत्म होकर जो है वो रह जाए। तो इसी तरह अगर मैं और आप अपने अपने वजूद को देखें, इंसानों को अगर हम देखते हैं, तो किसी की नाक छोटी है, किसी की लंबी है, किसी की मोटी है, आंखें छोटी हैं, किसी की गोल है, किसी की झील जैसी हैं, डिफरेंट आंखें, कद मुख्तलिफ है ना। तो अल्लाह ताला ने हर एक को एक खास अंदाजे में पैदा किया है। मसलन अब जैसे एक शख्स जो था वो जा रहा था बाग में, तो जब जा रहा था तो उसने देखा कि तरबूज नीचे पड़ा हुआ है। कहने लगा कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, पर पता नहीं अल्लाह ताला ने इसको नीचे क्यों रखा हुआ है। थोड़ी देर और आगे गया तो वहां सेब थे दरख्तों पर लगे हुए, और एक सेब जो था वो टूटा और उसके सर पर आकर लगा। तो कहने लगा शुक्र है या अल्लाह, यहाँ तरबूज भी लगा, ये एक सेब ही तो लगा है ना। अगर जो है वो सेब कितना छोटा सा है ना, अगर तरबूज ऊपर लगा हुआ होता तो फिर क्या होता है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने हर एक की एक जिसामत, एक शक्ल, एक सूरत, एक उसका अंदाजा, एक उसकी मिकदार, एक उसकी जिंदगी, एक उसकी मौत, एक उसकी हद बंदी की है। मसलन दुनिया में अगर कोई फिरौन है, एक उस जमाने में फिरौन था, आज भी बहुत से फिरौन है, एक खास लिमिट तक अल्लाह उसको जाने देते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसका इर्तका और उसका उरूज रोक देते हैं, फिर वो तनज्जुल की तरफ जाने लगता है ना। इससे क्या बात पता चलती है कि ये अल्लाह की जात है जो किसी की रस्सी को दराज नहीं करती। वह खल्ला का कुल्ला शैन, हर चीज को उसने पैदा किया, फकद्दरहू तकदीरा, और फिर हर चीज को एक खास अंदाजे पर रखा, हर चीज की एक खास जो है वो तकदीर जो थी वो मुकर्रर की। तो कोई भी चीज जानदार हो या बेजान, अल्लाह ताला ने जो है वो उसका एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया। तो अंदाजा क्या है, बाज कहते हैं कि उसका एक वजीफा मुकर्रर कर दिया। मसलन कोई जानदार ऐसे नहीं है जिसको मौत ना आए, हर एक को मरना है, हर एक को फना होना है। मसलन आप पानी को देखें, पानी का काम क्या है कि वो नशेब की तरफ बहता है। पानी के लिए मुमकिन नहीं है कि किसी वक्त वो बुलंदी की तरफ बहना शुरू कर दे, है ना, या पस्ती की तरफ बहने से वो रुक जाए। अब आग जो है उसका काम है गर्मी देना, आग के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ठंडक फराहम करना शुरू कर दे, है ना। अब आप देखें कि कुत्ता है, अब कुत्ते का एक खास कद है, अब कुत्ते को आप कितनी ही उम्दा गिजाएं क्यों ना खिलाएं, बहुत ज्यादा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी, लेकिन उसका कद घोड़े के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उसकी एक लिमिटेशन मुकरर कर दी है। तो इसका ये मतलब है, ये है अल्लाह ताला का अंदाजा कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक हद मुयन किया है, कोई उन हदूद से निकल नहीं सकता, सब उस हदूद के पाबंद हैं। तो ये सारी जो बात है उसका निचोड़ क्या निकला कि जब ये पूरी कायनात अल्लाह की हदूद की पाबंद है और अल्लाह के मुकरर किए हुए कानून पर चलती है, तो फिर मैं और आप अल्लाह के बंदे क्यों नहीं बन जाते। وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے اور یہ خدا عظیم اور علیم کی منصوبہ بندی ہے، تقدیر العزیز العلیم۔ اسی طرح سورت الحجر میں آپ پڑھ چکی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم نے ان کو ایک خاص اندازے ہی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اتارتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ کائنات جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اپنے اندازے پر جو ہے وہ چل رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے، وَاتَّخَذُوا اور پکڑ لیے اور بنا لیے، مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کے سوا، دُونِهِ کے معنی کیا ہے، اس کے علاوہ، اس سے آگے، اس سے ہٹ کر، کس سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر، الہ کی جمع کیا ہے، آلہتن، تو دوسرے معبود بنا لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو اہل مکہ تھے اور جو وہ شرک کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کا توڑ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ایک تو میں الہ ہوں جو خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، اور ہر چیز کو فقدرہ تقدیرہ بنایا، اور انہوں نے جو اپنے الہ بنائے ہیں مجھے چھوڑ کر، ان کا حال کیا ہے، لا یخلقون شیئن، کچھ پیدا بھی نہیں کر سکتے، لا یخلقون شیئن، کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انسان جن کو معبود سمجھتا ہے، فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء، سورج، چاند، ستارے، درخت، دریا، جانور، اور جن بھی انسانوں کو بھی معبود بناتا ہے، کبھی پتھر سے تراش کر، کبھی لکڑی کے بت، تو وہ کیسے ہیں، لا یخلقون شیئن وہم یخلقون، جو پیدا تو نہیں کرتے کسی چیز کو بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، اپنے لیے کوئی ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکون، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کس چیز کا، لانفسہم، اپنی ذات کے لیے، ضرا ولا نفعا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، ہے نا، جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکے اور نقصان نہ دے سکے تو اس کو معبود کیسے بنایا جائے۔ تو دلیل اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دی کہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، خود پیدا کیے جاتے ہیں، نمبر دو، نفع اور نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار، قدرت ان کے پاس نہیں ہے، نمبر تین، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، اس میں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں کہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، یہ کسی کو مار بھی نہیں سکتے، ولا حیاتن، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، ولا نشورا، اور نہ کسی مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ ولا نشورا کے معنی کیا ہیں، کہ دوبارہ جی اٹھنے کے لیے مالک نہیں ہیں، یعنی یہ جو ظالم جن کو یہ عبادت میں شریک کرتے ہیں اوروں کو، تو کسی بھی چیز کا ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی وہ شرک کرتے تھے اس پر ضرب لگائی ہے، اور تین دلائل دے کر جو ہے وہ ضرب لگائی ہے، نمبر ایک کہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، نمبر دو، نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، نمبر تین، زندگی موت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ان کی اس کی بھی ان کے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اب جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرقان نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو نذیر بنایا اور فرقان کو نذیر بنایا، تو انہوں نے لوگوں کو کیا بات بتائی تھی؟ انہوں نے یہی بات تو بتائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرنے کے بعد تم اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تم مرو گے پھر اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو جب یہ کر ہی نہیں سکتے تو یہ اس چیز کا ان کے اندر شعور بھی نہیں ہے۔ تب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اہل مکہ کے اعتراضات جو تھے، ان کا جو پروپیگنڈا تھا، ان کے وہ اقوال جس سے وہ عوام کو بدگمان کرتے تھے، جو قریش کے لیڈر، اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ گن رہے ہیں اور ان کو گنوا رہے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر جو ہے وہ 9 تک جو چلیں گے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان ہذا الا افک، نہیں ہے مگر یہ ایک من گھڑت چیز ہے۔ تو افک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیر دینا، پلٹ دینا۔ اور افک کے معنی پھر یہ جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس چیز سے کفر کیا؟ نبی کی بات ماننے سے، نذیر ہے نا نبی، قرآن کی بات ماننے سے، جو فرقان اور نذیر ہے، جب انہوں نے اس کو ماننے سے کفر کیا، انکار کیا، تو کہنے لگے ان ہذا الا افکن، کہ یہ جو ہے یہ افک ہے۔ اصل میں یہ افکن تھا، افکن تھا، آپ کو افکن نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ جو دوسری پیش ہے نا، دوسری پیش جو ہے کن، نون جو ہے نا، اس کو نون قطنی بھی کہتے ہیں، تو نون کے نیچے زیر دے کے اگلی سی بات کو ملا دیا گیا ہے۔ تو جو عربی قرآن آپ پڑھا لکھا ہوا دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو افکو نہیں نظر آئے گا، اور ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ افکو نفترہ ہو، کہ یہ ایک جو ہے من گھڑت چیز ہے۔ کیا چیز؟ یعنی قرآن مجید، اس طرح ہو، اس کو گھڑ لیا ہے۔ کس کو گھڑ لیا؟ قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ وَآنَهُ، اور اس کی مدد کی ہے۔ کس کی مدد کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ وَآنَهُ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ کی ضمیر کس لیے؟ یعنی رسول اللہ کے لیے، کہ رسول اللہ نے قرآن کو گھڑ لیا اور رسول اللہ کی مدد کی۔ قوم آخرون، ایک دوسری جماعت نے، ایک دوسرے گروہ نے، یعنی کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ کس چیز نے مدد کی؟ قرآن کے گھڑنے میں۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ 40 سال تک تو یہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اس کی زبان سے ہم نے ایسی بات کوئی سنی نہیں تھی، اچانک اس کی زبان سے ایسی باتیں کیسے آنے لگیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ راتوں کو چپکے چپکے، چھپ چھپ کر جو ہے کوئی آتا ہے، ان کو سکھا جاتا ہے، اور پھر یہ جب پڑھ لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر دن کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ وہ چند لوگوں کے نام لیتے تھے، اور وہ کن لوگوں کے نام لیتے تھے؟ جو اہل کتاب میں سے تھے، پڑھے لکھے تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ جیسے ایک وہ نام لیتے تھے عداس کا، یہ حویطب کا آزاد کردہ غلام تھا عداس۔ نمبر دو وہ نام لیتے تھے یسار کا، یہ بھی ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ یسار، یہ علا بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ تیسرا وہ نام لیتے تھے جبر کا، جیم بارا، یہ عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس کے گھڑنے میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ اور چند نام میں نے آپ کو جیسے بتائے بھی ہیں، جس میں عداس، یسار اور جبر۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ، یعنی کبھی وہ کہتے تھے کہ جیسے یہ عیسائیوں میں سے ہیں، کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ یہودیوں میں سے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خود تو وہ ایمان نہ لائے تو رسول اللہ کی مدد کیسے کرتے، اور اللہ رب العزت یہاں پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا حال جو ہے وہ کیا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑا ہے اور اس کی مدد کی ہے ایک دوسری قوم نے۔ تو قوم آخرون میں آپ یہ तीन का नाम ले सकती हैं, और भी इसी तरह के जिनका वो नाम लगाते थे, फकद जा उजुलम वजूरा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जो है वो सख्त जुमला बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि ये लोग जो बात कह रहे हैं, फकद जाऊ ये ले आए हैं, ये उतर आए हैं, जुल्म वजूरा। अब जुल्म ही काफी है, जुल्म जो है इसके मानी क्या है कि शिर्क करना, किसी चीज को किसी के महल पर ना रखना, उसकी सही जगह पे ना रखना। तो अब इनका जुल्म क्या है, ये शिर्क है इनका ना, फकद जाऊ जुल्मन, इन्होंने बड़ा जुल्म किया, बड़ी बेइंसाफी की बात की। अब जुल्म ही काफी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जूरा भी कह दिया। और जा वो रा जो है मैं आपको बता चुकी, किसे कहते हैं जा वो रा? हाँ, सीने सीने के ऊपर ये जो टेढ़ है ना कजी, इसके लिए आता है कि जैसे मुड़ावा होता है ना, तो इस तरह वो लोग जो हक बात सीधी बात होती है ना, सीधी बात को छोड़कर टेढ़ इख्तियार करते हैं, तो गोया के वो हक को छोड़कर टेढ़ा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया, वजूरा और सख्त झूठ बात कही, झूठ नहीं बल्कि क्या है, सर तसर झूठ। अगर आप इसका तर्जुमा सिर्फ झूठ करें तो फिर कज़िब लफ्ज भी तो आ सकता है ना। तो मानी क्या है यहाँ पर कि इन्होंने जो है बड़ी बेइंसाफी की बात कही, और इन्होंने जो है वो सरासर झूठ जो है वो बोला। इनका ये कहना कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया है या फिर किसी और ने रसूल अल्लाह की मदद की है, ये कितना बड़ा झूठ है, ये सरता पा झूठ है, ये सरता सर झूठ है, ये बड़ी बेइंसाफी की बात है। फकद जाऊ जुल्म वजूरा, यहाँ पे बड़ा ही अल्लाह ताला का जो है वो डांटने वाला अंदाज है, बड़ा ही सख्त अंदाज है कि ये कुरान की और नबी की मुखालफत में इतना बढ़ गए। और अल्लाह ताला ने आप देखें कि ये जो उन्होंने ढिटाई के साथ जो बड़ा जुर्म किया है, तो ये अल्लाह का अंदाज क्या है, बड़ी मुख्तसिर सी बात कह के, लेकिन सख्त बात कह के अल्लाह ने बात को खत्म कर दिया कि इनके हाल को तो देखो, फकद जाओ जुल्म अजूरा, अंदाजा करो फिर इनको इनका अंजाम क्या होगा। फकालू, और ये कहते हैं असातीरुल अव्वलीना, कि ये जो है ये सतरे हैं पहले वक्तों की, अल्लावलीन पहले जमाने की, पुराने जमाने की या पुराने लोगों की ये तहरीर करदा जो है ये सतरे हैं। इक ततबाहा जिसको जो है वो लिख लिया है ना, इक ततबाहा। अब इक ततबाहा इसके माने क्या है, असल में कताबा के मानी होते हैं कि लिखना, और आपको पता है अरबी जबान का ये कायदा है कि अगर उसमें एक नुक्ते का इजाफा हो और एक हरफ का इजाफा हो, आराब का फर्क हो जाए तो मानी बिल्कुल बदल जाते हैं ना। और अब आप देखें कताबा जो है तीन हरफी है ना, लेकिन जो है वो इक ततबाहा तो कितने हरूफ में इजाफा हो गया। तो इसके सही मफहूम जो है लुगत के एतबार से क्या है कि इसने दरख्वास्त की कि इसके लिए लिख दिया जाए। कतबा का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको जो है वो लिख लिया है, बल्कि मानी क्या है, एक ततबाहा मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इसने दरख्वास्त की कि इसके लिए लिख लिया जाए। एक तो इसके ये मानी है कि इसने खुद दरख्वास्त की है कि इसे लिख लिया जाए, इसके लिए लिख, एक ततबाहा यानी इसके लिए लिख लिया जाए। और एक तर्जुमा इसका ये भी जो है वो किया जाता है कि असल बात क्या है कि एक ततबाहा के है तो ये असातीरुल अव्वलीन, पुराने जमाने के जो औकात के जो लोग थे, पहले जो लोग हैं, ये उनकी तहरीरें हैं। एक ततबाहा जिनको इसने लिख लिया हुआ है, पहली बातें हैं। और जैसे बंदा कहीं से नकल करके लिख लेना, तो क्या मानी है, एक ततबाहा इसने उनको लिख लिया है। तो बात तो एक ही है कि दरख्वास्त की थी कि कोई इसके लिए वो पुरानी बातें लिख दे या आपने खुद उसको लिख लिया, तो दोनों बातें सही हैं। उनका ये मतलब था कि ये नकलें हैं पहलों की, और एक ततबाहा जिनको इसने लिख लिया है। अब खुद तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह वो ये कहते थे कि लिख ली हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते थे, फहिया तुमला अलैही। अगर इसका तर्जुमा ये करें कि इसने लोगों से ये कहा, दरख्वास्त की कि इसके लिए लिख ली जाए, तो फिर क्या है फाहिया, तो ये तहरीरें जो हैं तुमला अलैही, इसको नकल कराई जाती हैं। तुमला इमला कराना ना, लिखवाना, तो इसको सुनाई जाती हैं, इमला करवाई जाती हैं। कब? बुकरतं व असीला, सुबह शाम। यानी नकल इसकी दरखास्त पर कर ली गई, अब इसको लिखवाए जाते हैं सुबह और शाम, है ना। या ये कि इसकी दरखास्त पर लिखे जाते हैं सुबह और शाम इसके लिए, और या फिर आप ये कहेंगे कि क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, और कुरैश के लोग तो मानते थे ना कि रसूलल्लाह लिखना जानते ही नहीं है, पढ़ना जानते ही नहीं है, उम्मी है, और जब आप लिखना नहीं जानते तो दूसरों से दरख्वास्त करते हैं और आपके लिए वो लिख कर जो है वो तैयार कर देते हैं। और या फिर ये है कि इन्होंने लिख रखे हैं अगले अफसाने, अब बस ये वही सुबह शाम इसके सामने पड़े जाते हैं जो लिखे हुए हैं इनके या लोगों के। अब होता क्या है, फा या तुम ला ले ही बुकरता हूँ असीला, जिन्हें शख्स नकल कराता है, या आपको नकल कराए जाते हैं या आप इनको नकल, फा या तुम ला ले ही, यानी आप पर नकल कराए जाते हैं, बुकरता हूँ असीला सुबह शाम, तो आपको सुबह शाम ये तहरीरें जो है फिर सुनाई जाती हैं। आगे समझ बात की। अब आप देखेंगे कैसा कैसा उनका इल्जाम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कुल अनज़लहुल लज़ी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, अनज़लहु इसको नाजिल किया है, किसे नाजिल किया है, कुरान को इसको नाजिल किया है, अल्लज़ी उस जात ने, यालमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्द, जो के जानता है आसमानों और जमीन के भेद, इन्नहु काना गफूरर रहीमा, हकीकत यह है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। तो अब ये के एक तरफ जो है वो कुरैश वालों को डांटा जा रहा है, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, और तीसरी तरफ जो है ये अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि इसको नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। मानी इसके क्या है कि अल्लाह ताला को खूब ये पता है कि ये किसका कलाम है ना, किसने नाजिल किया, किससे नाजिल किया, और अहले मक्का का ये बात कहना कि जो है वो आपने इसको घड़ लिया है या कोई आपको आके सुना जाता है, आप किससे सीख लेते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो उसने नाजिल किया है जो जानता है आसमानों और जमीन का भेद। तो इसे दरअसल मुराद ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला को यही बात नहीं पता कि किसी एक बात का अल्लाह ताला को पता हो कि कुरान क्या है और ये अल्लाह की किताब है, बल्कि अल्लाह ताला को ये भी पता है कि कुरान मजीद तो अल्लाह ताला ने दिया ही, लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं ना ये झूठ बात कर रहे हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला कुरान मजीद को उतारने वाला अलीम है, वो खबीर है कि आसमान और जमीन के अंदर कौन झूठ बोलता है, कौन ज्यादती करता है और किस तरह की जो है वो बात करता है। तो यहाँ पे इसके मानी क्या है कि जो रब आसमानों जमीन की बात जानता है तो उसी ने तो कुरान नाजिल किया, उसी को पता है कि ये अल्लाह का रसूल है और सच्चा है, और उसी को पता है कि ये लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं। तो या लमुस सिराफिस समावाति वल अर्द, ये जानता है आसमान और जमीन के, इन्नहु काना गफूर और रहीमा, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात क्यों कही कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो बख्शने वाला है और मेहरबान है। तो दरअसल ये फिक्रा बड़ा मानी खेज है, इसके मानी ये हैं कि क्या शान है अल्लाह की रहीमी की और गफारी की कि जो लोग हक को जो है वो नीचा दिखाते हैं, हक पर तूफान घड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, और ये अल्लाह ताला की गफूर रहीमी है कि वो उनको मोहलत देता है, और उनकी ये जो है वो जुल्म व जूरा, ऐसी बातें सुनने के बाद अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देता है ना। तो ये क्या मतलब है यहाँ पे ये कहने का, कहने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो पकड़ नहीं रहा, ठीक है कि वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है, तो ये क्या है, ये दरअसल अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी है। इसमें ना दरअसल एक नसीहत की जा रही है कि जालिमों अब भी कुफ्र से, जुल्म से बाज आ जाओ, हक बात को सीधी तरह मान लो तो आज भी सारी गलतियां माफ हो सकती हैं जो अब तक तुमने की हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कैसा है कि गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। इन्नहू काना गफूर रहीम, बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। कि तुम लोग अपने शिर्क से बाज आ जाओ। और वो क्या इतराजात करते थे, वकालू माल हाज रसूल, कहते थे कैसा है ये रसूल, या कुलु तामा, वो खाता है खाना, व यमशी फिल अस्वाक, और चलता है बाजारों में, लौला उन्जिला इलैहि मलकुन, क्यों ना इस पर नाजिल किया गया कोई फरिश्ता, फयकूना माहू नजीरा, जो इसके साथ रहता, फयकूना माहू आपके साथ होता आपकी मैयत में, और क्या करता है, नजीरा, जो लोग रसूल का इनकार करते तो ना मानने वालों को डराता, नजीरा, तो ना मानने वालों को वो धमकाता। अब आप देखें कि अहले मक्का का ये एक और एतराज था, और उनका एतराज क्या था कि माली हाजर रसूल, कैसा रसूल है, बड़े ताज्जुब के साथ, बड़े तंज के साथ वो ये कहते थे कि खूब रसूल है, भी रसालत का दावा है, और हमारी ही तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह जुरियात जिंदगी के ये मोहताज हैं, है ना, और बाजारों में चलते फिरते हैं, माली हाजर रसूल, जैसे किसी को है ना बड़ा बनता फिरता है ये, है ना, माली क्या है इसको, क्या है ये, माली हाजर रसूल, कैसा है ये रसूल, या कुल तामा, खाता है खाना, है ना। और आज भी क्या समझा जाता है कि फलां तो इतना पहुंचा हुआ है कि कितने कितने दिन खाना ही नहीं खाता, फलां तो इतना पहुंचा हुआ है वो सोता ही नहीं है, उसने तो शादी भी नहीं कराई। तो बंदगी का एक आला मकाम ये समझा जाता है कि वो आम बंदों की तरह एक्ट ना करे। अगर वो आम बंदों की तरह एक्ट करे ना, सोए भी, खाए भी, पिए भी, बीवी बच्चे भी हों, तो कहते हैं कि नहीं ये क्या फिर बंदगी हुई ना। तो वलायत का आला मकाम ये समझा जाता है कि वो शख्स बशरी हाजात, जरूरियात और तकाजों से मुबर्रा हो, है ना। तो ये अहले मक्का भी कहते थे, और आज भी बाज लोग जो कहते हैं कि हाँ फलां जो है वो अगर इतना वो पहुंचा हुआ है तो फिर वो, उसको तो नींद भी आती है, वो तो खाना भी खाता है। और जैसे वो मैंने आपको एक वाक्या भी सुनाया था, किसका था वाक्या वो, हाँ मैंने आपको वाक्या सुनाया था जुनेद बगदादी का, और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाज लोग क्या कहते हैं कि लोग क्या कहते थे उनके बारे में, क्योंकि कोई उनके पास गया और किसी ने कहा कि बड़ा पहुंचा वो बुजुर्ग है, तो कोई गया काफी दिन उनके पास रहा और फिर वापस आने लगा, तो आपने वो जो भी बुजुर्ग थे जुनेद बगदादी या जो भी थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप हजरत आए भी और आप जाने भी लगे, आपने बताया नहीं कि आप आए किस लिए थे और फिर आप खामोशी से जा क्यों रहे। कहने लगे कि असल में आया तो आपकी बहुत करामात सुनकर आया था कि बड़े वो पहुंचे बुजुर्ग हैं, लेकिन इतने दिनों से मैं आपके पास ठहरा हूं, मैंने कोई आपकी करामत ही नहीं देखी ना। उन्होंने पूछा हजरत अच्छा ये भी बताओ, जितने दिनों से तुम ठहरे हो क्या कोई बात तुमने मेरी जिंदगी में कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी देखी, चलो मुझे वही बताते चलो। उसने कहा कि मैंने करामत तो कोई नहीं देखी, लेकिन कोई बात आपको कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी करते हुए देखा। तो कहा कि जा, जुनेद बगदादी की यही करामत है। तो असल करामत यही है कि बंदगी में इबादत करना, यानी बंदा बनकर अल्लाह का हो जाना, और ये जाहिर किया जाए कि किसी, बाज लोग जब कोई मर जाता है या किसी की तारीफ के या उस्ताद की तारीफ के बाज लोग गुण गाते हैं, ये उसको गुस्सा ही नहीं आता, इसका मतलब वो बंदा नहीं है फिर, है ना। अगर उसको गुस्सा ही ना आए तो वो बंदा ही नहीं है जी, वो तो खाना भी नहीं पकाते और वो आम जो लोग जिस तरह से रहते हैं उस तरह से वो एक्ट ही नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि आम इंसान, यानी आम इंसान के जो तौर तरीके और तकाजे हैं, तो उस्ताद तो उन्हीं पर रहता है और फिर सबको लेके चलता है ना, है ना। तो फिर बाज लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि, यानी बाज औरतें कहती हैं कि खाना पकाना ये मेरा काम नहीं है, इसलिए कि मेरा उस्ताद जो नहीं पकाता। वो एक दफा किसी ने देखा कि उस्ताद जो है वो घर में जो है वो झाड़ू दे रहा है, दे रही है, तो जो भी स्टूडेंट थी उसने जाकर कहा कि, घर वालों से भी कहा कि कैसे हैं आप, इसकी इज्जत ही नहीं करते कि ये झाड़ू जो है वो दे रही है ना। तो ये तो और ज्यादा है तवाजो और खिदमत और इंतसारी और आजी और अब्दियत के मकाम पर, कि वो एक इंसान, आम इंसान है, वो सारे काम करता है, वो कपड़े भी धोता है, वो खाना भी पकाता है, वो झाड़ू भी देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू भी हमारे सामने आता है ना, कि आपने बटन भी लगाए, आपने मशकीजा जिसमें पानी भरा जाता था उसको सिया भी, है ना, हाँ उसको सिया भी, पैवंदकारी उसने की, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں جو ہے وہ اپنی ازواج محترمہ جو اپنی بیویاں تھیں ان کی آپ مدد بھی کرتے تھے. عام انسان کا ایک معیار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی, آپ کو پیاس بھی لگتی تھی. جب غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے, بھی کہا جاتا ہے, جب صحابہ آپ کے پاس آئے پریشان حال اور انہوں نے بتایا کہ ہم بڑے بھوکے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے پیٹ دکھائے جس پر پتھر باندھا ہوا تھا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ دکھایا ہے نا. کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ دو پتھر باندھے ہوئے تھے. جب صحابہ نے خندق کھودنے کی آپ کو ان کو دس دس گز جگہ یا جو جگہ بھی سونپی گئی, تو رسول اللہ نے بھی اپنے لیے وہ جگہ لی تھی کھودنے کے لیے نا. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک عام انسان تھے, اور یعنی عام انسانیت میں رہ کر انہوں نے جو ہے وہ بندگی کی ہے. ایسے ہی ہے نا, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اور اہل مکہ کو اس بات پہ جھگڑا تھا, ما لہذا رسول یاکل الطعام, کیسا ہے یہ رسول جو کھانا کھاتا ہے. تو کھانا کھانا عیب نہیں ہے, لیکن اتنا کھا لینا کہ پھر جو ہے وہ کھانے کو لیے لیے پھرے, یہ عیب ہے. یا کھانے کے لیے جینا, یہ عیب ہے. اتنا کھائیں کہ زندہ رہ سکیں اور اللہ کی بندگی کریں, یعنی کھانا پینا زندگی کا مقصد نہ بن جائے. آج ایسے بہت سے لوگوں کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے, اور اسی طرح بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد بازاروں میں ہی جانا ہے. ویسے بازار میں چلے جانا ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کو بازار سب سے زیادہ ناپسند تھا. دنیا ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو سکتا ہے. تو یاکل الطعام, وہ کھانا کھاتا ہے, فیمشی فی الاسواق, سوق نہیں تھا بلکہ اسواق, سوق کی جمع ہے, یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یعنی عام انسانوں کی طرح. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گلیوں میں چلنا پھرنا, ضروریات زندگی رکھنا, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ لولا انزل الیہ ملکن, اس پر کوئی اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا, فیکون معہ نذیرا, جو اس کے ساتھ ہوتا اور جو نہ مانتے ان کو ڈراتا دھمکاتا. آج بھی ہے بعض لوگوں کا جو ہے وہ بعض لوگوں کے ساتھ دربان ہوتے ہیں, دو تین چار لوگ آگے پیچھے ایک پرا بنا کر ایک چھتری کی طرح ان کے ساتھ چلتے ہیں, تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا یہ, یعنی ان کے لیے راستہ بنانا, ان کے لیے کرسی آگے آگے کرنا, ان کے لیے کھانا آگے بچھانا. کہتے ہیں کیا مقام ہے, کیا دنیا ان کے آگے پیچھے چلتی ہے نا. تو اصل بات کیا ہے, آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا پرا تو نہیں ہوتا تھا, نہ کوئی فرشتوں کا پرا ہوتا تھا جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ چلے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یعنی یہ کیسرو کسرا کا جب آیا تھا ایلچی سفیر, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا تھا, اب وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, بڑا وہ تیار خیار ہو کر آیا اور پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں آپ کے جو بادشاہ ہیں. تو اس نے سوچا کہ کہیں کوئی دربار لگا ہوا ہوگا, کہیں کافی من سونا اوپر لگا ہوا ہوگا, اعلیٰ قسم کا زرق برق لباس پہنا ہوا ہوگا. تو مسجد نبوی میں پتا کیا تو وہاں نہیں, باہر پتا کیا تو یہاں نہیں, وہاں دیکھ لو وہاں دیکھ لو نشانی کیا ہے, یہیں کہیں ہوں گے. تو جب دیکھا تو زمین پر لیٹے ہوئے تھے, پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور وہ شخص مبہوت ہو گیا کہ یہ وہ بادشاہ جو اس وقت کیسرو کسرا پر بھی جس کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں لوگ نام سن کر ان کا ڈرتے تھے, کوئی دربان نہیں تھا, کوئی ایلچی ساتھ نہیں تھا, ہے نا. تو ایک عام شخص, تو اصل بات کیا ہے کہ اہل مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا سردار ہے, یعنی خود سردار تھے تو کہتے تھے کیسا نبی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا, جو انکار کرتا تو ساتھ ساتھ ڈراتا چلا جاتا. اور یلقی الیہ کنزن, اور کچھ نہیں, یا پھر اللہ نازل کر دیتا, اتار دیتا, یلقی انڈیل دیا جاتا, القا کر دیا جاتا, ڈال دیا جاتا, جیسے ملاقات نہیں ہوتی, جیسے ڈال دیا جائے, الیہ اس کی طرف, کنزن خزانہ, کہ کوئی خزانہ ہی ان کے طرف جو ہے وہ ڈال دیا جاتا. او تکون لہ جنت, یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا, یا کلو منہا, کہ جس سے یہ اطمینان کی روزی کھاتا. تو جیسے آج کے زمانے میں فیکٹریاں ہوتی ہیں نا, فیکٹریاں, کاروبار, بزنس ہوتے ہیں, کسی کے کئی کئی بزنس ہوتے ہیں, لوگ گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں باغیچیاں ہوتی تھی, باغیچے ہوتے تھے اور سردار ہوتے تھے, ہے نا. अब ये कि कोई बागी होता जिसमें इसको कुछ भी ना करना पड़ता, मेहनत मशक्कत और घर बैठे इत्मीनान की ये रोजी खाता। तो ये एतराजात किए और आप देखेंगे कितने एतराजात हैं। नंबर एक खाना खाना, नंबर दो बाजारों में चलना, नंबर तीन फरिश्ते का साथ नाजिल ना होना, नंबर चार खजाना ना होना, नंबर पांच बाग का ना होना। तो पांच एतराज करने के बाद वो कहते थे क्या कहते, वकाल जालिमूना, और अल्लाह ताला कहते हैं जालिम ये कहने लगे, जालिमों ने कहा इन तत्तबिउना इल्ला रजुलम मसहूरा, कहते थे कि ये जो है वो ऐसा आदमी है मसहूरा जिसके ऊपर जादू कर दिया गया है, ये एक सहर ज़दा आदमी है। इन तत्तबिउना तुम लग गए हो इसके पीछे, वकाल जालिमूना और जालिम कहते हैं इन तत्तबिउना नहीं पैरवी करते तुम इल्ला मगर रजुलम मसहूरा एक सहरजदा आदमी की। अब आप देखें कि इनकी अपनी बात में ही तजाद है, एक तरफ कह रहे हैं कि रजलुम मसहूरा, दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको आके कोई सिखा जाता है। एक ततबहा फाहिया तुमला लही बुकरत वसीला, है ना, अगर एक जादू किसी पर हो जाए तो वो शख्स तो फिर बहकी बहकी बातें करता है, उसको कौन सिखा सकता है, उसको तो समझ ही कुछ नहीं आती। तो एक तरफ कहते थे कोई सिखा जाता है और दूसरी तरफ कहते थे रजुलम मसहूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं उन्जुर कैफ दरबू लकल अम्फाल, देखो गौर करो कैफ दरबू के कैसी कैसी जो है ये मिसालें दे रहे हैं। दरबुल दरबू के मानी क्या है, मिसालें देना, लकल अम्फाल तेरे सामने, यानी ये लोग तुम्हारे आगे कैसी कैसी मिसालें दे रहे हैं। फदल्लू फला यस्तती ऊन सबीला, के ये ऐसे लोग हैं फदल्लू बहक गए हैं, फला यस्तती ऊन सबीला, और अब इनको कोई रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा। तो आप देखिए कि यहां पर जो है वो दल्लू का लफ्ज किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, यानी गोया के अल्लाह ताला ये जो है ना जैसे वला द्वालीन है ना, द्वल्लू, तो द्वल्लू का रूट क्या है, द्वाद लाम लाम। तो मानी ये हैं कि अब ये लोग जो हैं फदल्लू ये गुमराह हो गए हैं, ये बहक गए हैं, ये कैसी कैसी बातें करते हैं। दरबू असल में दरबुल अमसाल आप कह ले, आप इसी से उर्दू में भी कहती है दरबुल मिसल, ये चीज मशहूर है। तो ये ऐसी अजीब हुज्जतें पेश करते हैं तुम्हारे आगे फदल्लू कि ये बहक गए हैं, फला यस्ततीउना सबीला, और ये ताकत ही नहीं रखते किसी रास्ते की, यानी अब गोया के इनको कोई बात सूझती नहीं है, ये अल्लाह के नबी की मुखालफत में कुरान की मुखालफत में बिल्कुल मजनू हो गए, दिल का बुखार निकालना और ऐसी अजीब अजीब बातें करते थे कि खुद ही वो बातें इनके ऑपोजिट जाती थी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि बिल्कुल ही भटक गए हैं ये लोग, फदल्लू फला यस्ततीउना सबीला। तो यहां तक आयत नंबर 9 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मोतरजीन थे इनके एतराजात जो है वो नकल किए हैं, और आयत नंबर ये जो 9 है और आयत नंबर 8 है, इस 8 और 9 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी हवास बाख्तगी को नकल किया है कि एक तरफ कहते हैं कि कोई सिखा गया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इल्ला रजुलम मसहूरा, है ना। तो गोया के ये बड़ी अजीब बातें हैं जो कि ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले मक्का एतराज करते थे, और जब एतराज करते थे और इल्जामात लगाते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या इल्जाम लगाएं, है ना। इसलिए कभी वो कुछ करते थे और कभी जो है वो कुछ करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनकी तमाम बातें जो है वो उनका रद्द जो है वो किया है। अब आगे मजीद जो है वो अगली जो आयतें हम पढ़ेंगे आयत नंबर 10 से लेकर, तो एक तरफ अल्लाह ताला इनके एतराजात का जवाब भी देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे जो ये एतराजात कर रहे हैं तो उसके एतराज करने की असल में वजह क्या है।